नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारीज। जागरण किसे कहते हैं? जब हम खुद ये जान लें कि हम क्या हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ज़िंदगी का पूरा सफ़र सोते हुए ही गुजर गया, और जब हमने ये जाना कि अरे हम कौन हैं, तो ऐसा लगता है कि खुद को ही नहीं पहचान पा रहे, खुद से ही खुद का तारुफ कराने की कोशिश करते हैं। ये पूरी श्रृंखला जो हमारी चल रही है, उसमें इन दिनों हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन की। कई सारे मुद्दे आए, कई सारी बातें आई, कई सारी मिथ्स जो डिप्रेशन से जुड़ी हुई थी वो दूर हुई, लेकिन आज जो मुद्दा हम लेकर आ रहे हैं वो है जब हम या आप विक्टिम्स हो जाते हैं किसी भी हादसे का। इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर गिरीश पटेल, जाने माने साइकोथेरेपिस्ट। डॉक्टर गिरीश, अ वेरी वार्म वेलकम।
नमस्कार।
नमस्कार। और हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी, आपका स्वागत।
ओम शांति।
ओम शांति। डॉक्टर पटेल, शुरुआत करते हैं उस मुद्दे से कि अगर एक बड़ा हादसा हो जाए, चाहे कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए या फिर कोई आग लग जाए या कुछ इस तरह का इंसिडेंस हो जाए जिसमें पब्लिक आउटक्राई भी है, मैं उस जो पूरा हादसा हुआ है उसका एक विक्टिम हूँ, चाहे मुझे फिजिकली कोई हार्म नहीं हुआ है, फिजिकली हार्म हो जाए, हैंडीकैप्ड हो जाऊँ तब भी प्रॉब्लम है, लेकिन एक इमोशनल स्कार, एक डिप्रेशन सीप इन कर जाता है, बार 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 वो चीज़ याद आती है और उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, तब क्या किया जाए?
मैं समझता हूँ इस प्रकार की जो इवेंट्स है उसका कारण एक तो बहुत बड़ा फियर या तो शॉक, क्योंकि मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, नहीं, फिर भी वो शॉक रहेगा और वो शॉक बार 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 वो एक जीवन का ऑब्सेशन भी बन सकता है। जो फोबियाज डेवलप होते कई प्रकार के, वो फोबिया इसी प्रकार से डेवलप होते हैं। जैसे ऐसे हादसे है तो हो सकता है कोई व्यक्ति को बड़े आवाज का फोबिया हो जाए, थोड़ा भी कहीं क्रैकर्स भी जैसे दिवाली में फूट रहे हैं तो वो एक्सट्रीम उसको फियर हो जाएगा।
तो जब तक वो फिजिकल था तब तक तो मैं फाइट आउट करता रहा, सब लोगों ने कहा, लेकिन जैसे वो नॉर्मल हुई लाइफ, जो इमोशनल स्कार्स थे वो भूल के मैं भी अपने आप को खुद मेहनत करता रहा, कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन सीप इन कर जाता है। उस डिप्रेशन से कैसे बाहर निकल सकते हैं?
उस डिप्रेशन में मैं सोचता हूँ कि रिवेंज बहुत बड़ी बात है। जैसे हादसों में एक तो हुआ वो फोबिया, वो एक डिफरेंट इश्यू है, उसको भी हमें डिस्कस करना चाहिए, और एक बात है कि जो रिवेंज की एटीट्यूड आती है कि वैसा क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए। कई बार टेररिस्ट अटैक्स होते हैं तो देन ऑल्सो नो यू फील लाइक टेकिंग अ रिवेंज। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि वो भी टेररिस्ट बन गए। तो उस इश्यू को एक अच्छे से अच्छा काउंसिलर उस बात को समझ करके, उनके जो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है उसे अंडरस्टैंड करके एटीट्यूड को चेंज करना सिखा
कितना
सकता है।
जरूरी हो जाता है इन हादसों में, इन
तो सबको जरूरी है वास्तव में। बोले ऊपर से हम कहे भी कि आवश्यक नहीं है, मैं तो नॉर्मल हूँ, लेकिन हर एक विक्टिम को वास्तव में थोड़ा एक दो घंटा तो काउंसिलिंग होना ही चाहिए ताकि हम ठीक से उसे अंडरस्टैंड कर सके और उस अनुसार सही राय दी जाए।
बिल्कुल सिस्टर शिवानी, मेरे साथ ये क्यों हुआ, ये क्वेश्चन कंटिन्यूस हैमर करता रहता है। ऐसे में भारतीय स्पिरिचुअलिटी, अगर हमारी अपनी सोच को हम देखें कि कार्मिक डेप्थ है, स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली रियली हेल्प, काउंसलिंग ऑफ कोर्स हैज टू बी देयर, बट ये जो विक्टिमाइजेशन की बात है जहाँ ऐसे में बिल्कुल सब मेरे साथ क्यों, मैं अच्छा बना था सब कुछ, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया, कंटिन्यूस ये सवाल सिर्फ लोगों से ही नहीं अपने आप से पूछता रहता है वो आदमी। फिर
सबसे बड़ा डिप्रेशन का कारण ही शायद वो बन जाता है, या वो दुख में जाने का कारण ही वो बन जाता है कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। और यू नो जनरली लोग कहते हैं मैंने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया, मैं तो सारी जीवन अच्छा ही चल रहा था, तो मेरे साथ फिर बुरा क्यों हुआ। अगर हम लॉ ऑफ कर्मा को भी लें तो यही हमें सिखाया गया कि आप जैसा करेंगे वैसा आपके साथ होगा। तो हम कहते हैं लेकिन मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, या थोड़ा बहुत किसी को दुख दिया, लेकिन इतना बुरा किसी के साथ नहीं किया है कभी जो मेरे साथ ऐसा होना चाहिए। तो वहाँ कर्म फिलोसफी या कर्म का ज्ञान पता होते हुए भी उसको समझ जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कर्म फिलोसफी सिर्फ एक जीवन पर आधारित नहीं है। एक जीवन पर वो तब तक आधारित थी जब मैं एक शरीर तब मेरे लिए जीवन क्या है, जिस क्षण में पैदा हुई अब तब से लेकर अब तक मैंने क्या अच्छा किया क्या गलत किया, तो आई यूज़ टू सेट माई पैरामीटर, मैंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन जब ये समझ में आ गया कि ये शरीर नहीं, ये तो एक कॉस्ट्यूम है, मैं एक आत्मा हूँ जिसने इस शरीर को धारण किया है, तो अब एक सेकेंड के लिए डिटैच हो जाइए, यू नो टेक योर सेल्फ सेपरेट, कि मैं एक आत्मा हूँ, ये शरीर मैंने धारण किया, मुझ आत्मा की एज कितनी है?
वो तो है ही,
इस शरीर की एज 35 है मुझे पता है, तो देन आई से आई हैव डन गुड फॉर 35 ईयर्स, लेकिन मैं आत्मा हूँ, अब मेरी एज कितनी है और मैंने इस एज में कितना अच्छा किया और कितना गलत किया, दिस हाउ विल आई अंडरस्टैंड। जैसे आपने कहा आत्मा अजर अमर, तो आत्मा क्या कर रही है, इट्स इटर्नल, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती है, तो वो एक कॉस्ट्यूम लेती है, टाइम पूरा हुआ, वो भी कब टाइम पूरा हुआ, उस कॉस्ट्यूम को छोड़ा, तो कॉस्ट्यूम को छोड़ते ही वो कहाँ जाएगी, वो एक दूसरा कॉस्ट्यूम लेती है, लेकिन जब दूसरा कॉस्ट्यूम लिया, इस कॉस्ट्यूम में जो जो डीलिंग्स की थी, सपोज आज आपने पिंक कलर की साड़ी पहनी है एंड आज आप मेरे से 100 रुपीज़ ले लेती हैं, तो मैंने आपको 100 रुपीज़ दिए, आप लेकर चले गए, ठीक है, कल आप ब्लू साड़ी पहन कर आती हैं और आप कहें नहीं मैंने तो पिंक साड़ी जब पहनी थी तब आपको 100 रुपीज़ दिए थे, तो वो बात वहीं की वहीं फिनिश हुई, अब मुझे वापस नहीं करने, तो दैट्स नॉट लॉजिकली राइट। आई सर आपकी साड़ी ने पैसे नहीं लिए थे, आपने पैसे लिए थे, सो इट डजेंट मैटर कि आपने कौन सी आज साड़ी पहनी है, यू स्टिल हैव टू रिटर्न माय 100 रुपीज़ टू मी।
सोल के डेप्थ्स,
यस, तो नाउ व्हेन आई अंडरस्टैंड दैट आई एम अ सोल, आई अंडरस्टैंड कि इस कॉस्ट्यूम में शायद मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, लेकिन मैंने बहुत सारे कॉस्ट्यूम्स और पहले धारण किए थे, उन कॉस्ट्यूम्स में मैंने क्या क्या किया I don't remember. तो आज मेरे साथ जो कुछ हो रहा है, when we understand karma, it's karma of the soul, not karma of the body. तो soul की age, ये age नहीं है. Soul की age बहुत सारी lives पहले जा रही है और बहुत सारी lives में बहुत सारे लोगों के साथ बहुत कुछ हमने किया है. तो वो सब का डीलिंग कंप्लीट करना या जिसको हम कहें कार्मिक अकाउंट सेटल होना, वो होना ही है।
सो फाइनली आई थिंक इट कम्स डाउन टू एक्सेप्टेंस, सिस्टर शिवानी की एक्सेप्ट कर लें कि ये कार्मिक डेप्ट है, इसमें कुछ नहीं कर सकते।
एक्सेप्टेंस लेकिन अंडरस्टैंडिंग के साथ, यू नो इट इज़ नॉट अ फोर, एक होता है कि ज़बरदस्ती एक्सेप्ट कर लो, इट्स लाइक अगर आपको मुझे वापस करने हैं वो 100 रुपये, आप कहो ठीक है जी ज़बरदस्ती, मतलब मैं स्वीकार करूँ, ज़बरदस्ती नहीं है, आपने लिया था, सो इट इज़ एन अंडरस्टैंडिंग, आपने लिया था आपको देना है, अगर हम ज़बरदस्ती एक्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे वो नहीं होगा।
लेकिन फिर अगर मुझे याद ही नहीं कि हाँ, मैंने लिया था या नहीं,
हाँ,
तो मैं एक्सेप्ट कैसे करूँ?
लेकिन समझ जाना पड़ेगा कि हर चीज़ एक नियम से चल रही है, हु इज़ इट अदरवाइज हु डिसाइडेड दैट आई शुड बी अ पार्ट ऑफ दैट विक्ट, यू नो दैट इंसिडेंट, देर इज़ नो बडी एल्स। और अगर जब हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं, दैट इज़ नॉट फेयर, बिकॉज पिता है, हम बच्चे हैं, वो कभी नहीं ये डिसाइड करेगा कि एक बच्चा यू नो ट्रेन ब्लास्ट का विक्टिम हो जाए और दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक है, एक पिता कभी ये नहीं कर सकता है। और अगर परमात्मा ये कर भी रहा है तो देन वी कैन क्वेश्चन ऑन व्हाट बेसिस, तो परमात्मा हमारी जीवन की यात्रा नहीं डिसाइड कर रहा है, हमारे अपने किए हुए कर्म, एंड दैट्स व्हाई थॉट्स लीड्स टू डेस्टिनी, उसमें सब थॉट्स जो अभी किए जो बहुत सारे पहले, लेकिन वही थॉट्स अब उस डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं।
Okay.
अब जो हुआ हादसा वो पिछले किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से हुआ, लेकिन उस हादसे के बाद अब क्या करना है, एटलीस्ट दैट इज इन माय कंट्रोल नाउ।
और ना कनुप्रिया जी, इसमें एक मनोवैज्ञानिक पहलू को भी सोचा जाए, वो शायद सरल भी हो सकता है, ये सत्य है कि मेरे साथ ये हादसा हुआ, लेकिन औरों को और भी प्रॉब्लम हुए हैं। अगर औरों के जीवन को आप देखो पूरे, तो उतनी ही मैग्नीट्यूड के भी, किसी को कैंसर हो गया, किसी की माँ बचपन में ही गुजर गई, तो वह देखेंगे तो सच उतने बड़े।
डॉक्टर पटेल, लेकिन बात ये होती है कि जब इसमें आ जाते हैं, जब हम उस दौर से गुजर रहे होते हैं, तब हम दूसरे जो हमारे से भी बुरी हालत में उन्हें नहीं देख रहे होते हैं।
वो गलत है ना?
हाँ, लेकिन होता यही है, मतलब
इसलिए कि वाई मी एटीट्यूड कभी नहीं कहो।
हाँ, बिल्कुल,
यह सोचो उल्टा, तब समय भी दो और ये प्रैक्टिकली सोचो कि भी औरों के भी सामने सचमुच प्रॉब्लम्स हुए। इसमें एक बहुत अच्छी कहानी है जो इंटरेस्टिंग भी होगी। कहते कि एक बार एक व्यक्ति को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ और वो भगवान के पास गया और भगवान को कहा कि मुझे बहुत प्रॉब्लम है, भगवान मैं कितना बदनसीब हूँ, हाँ वाई मी, मुझे ही देखो, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है ना, उसकी गठड़ी बहुत बड़ी थी। फिर भगवान ने कहा कि भी तुझे देखना है कि भी औरों को भी कितने प्रॉब्लम है, कहा बिल्कुल मुझे देखना है। तो परमात्मा ने सबकी दिखाई गठड़ी, हाँ उसके पिता की गठड़ी दिखाई, उसके चाचा की दिखाई, नेबर की दिखाई, तो जाके उसने खोल के देखा तो उनकी गठड़ी तो और भी बड़ी थी, उनके प्रॉब्लम्स तो और भी बड़े थे। नेबर का बेटा ड्रग्स लेने लगा था, बहुत सीरियस प्रॉब्लम था। हाँ, किसी के साथ वो फेथ टूट गया था, किसी का अफेयर था दूसरे के साथ, तो उसको तो और बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। तो सब वह देखा तो उसको लगा हाश नहीं, मेरे प्रॉब्लम तो कम है, फिर वो जाने लगा। हाँ, अंत और भी इंटरेस्टिंग है इसका, बस थोड़ा सा स्पिरिचुअल है। वो जाने लगा तो भगवान ने कहा जा रहा है? उसने कहा हाँ जा रहा हूँ, अभी मुझे तसल्ली हो गई, मेरी गठड़ी तो छोटी है। फिर से पूछा जा रहा है? कहते हैं हाँ हाँ जा रहा हूँ, अभी तो मैं एकदम सेटिस्फाइड हूँ। फिर पूछा गठड़ी? तो कहा जा रहा हूँ। अरे बुद्धू, देख और सब तो गठड़ी छोड़ के गए यहाँ पर, तू क्यों लेके जा रहा है? तो उसे ट्यूबलाइट हो गया, अरे रे तो सब मुझे छोड़ के जाना है,
लेकिन एक और बड़ी गठरी लेकर आऊंगा जब मैं वापस लौटूंगा।
तो वो दे दो परमात्मा को। हाँ, अपने प्रॉब्लम है, एक तो राइट सोचो, साइकोलॉजिकली भी सोचो, स्पिरिचुअली भी सोचो, फिर अल्टीमेटली अपने प्रॉब्लम से भगवान को सौंप दो।
बहुत सुंदर ये लगता है। स्पिरिचुअली भी इसको अब साइंटिफिकली प्रूफ कर दिया गया है, क्योंकि जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, पहले हिप्नोटिज्म हम सुनते थे, लेकिन हिप्नोटाइज वो इस जीवन में ही करते थे। यू नो, आपके कोई भी प्रॉब्लम को वो आपको हिप्नोटाइज करके सबकॉन्शियस माइंड से वो बातें निकालते थे कि आपके बचपन में या कुछ क्या हादसा ऐसा हुआ था जिसका ट्रॉमा आप अभी तक एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और अब जो साइंस ने और प्रगति की है, तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या है, आप हिप्नोटाइज कर रहे हैं, आत्मा है तो आत्मा की कोई एज नहीं है। अगर आप उसको 10 साल पीछे लेके जा सकते हैं, आप उसको 50 साल भी पीछे लेके जा सकते हैं, तो आप उसको 200 साल पीछे भी लेके जा सकते हैं, बात सिर्फ कितना पीछे जाने की है। तो आज कई लोग जो अपनी प्रॉब्लम्स लेके, मेरे को लगता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन के प्रोसेस के थ्रू गुजरते हैं, तो हिप्नोसिस में यही पता चलता है कि उसकी जड़ कहीं ना कहीं थी। कोई चीज भी आपके साथ अभी ऐसी नहीं हो रही है जिसका कनेक्शन कहीं पीछे जुड़ा हुआ नहीं था, और जैसे ही उन लोगों को वो कनेक्शन दिखाई देता है वो फ्री हो जाते हैं, बिकॉज दे जस्ट नीड अ लॉजिक कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है।
That's what I'm saying. Answer.
Once they get the answer, it's very easy to accept. सारे जितने केस स्टडीज ये हुई हैं और इस पर बहुत अच्छी अच्छी बुक्स भी पब्लिश हुई हैं, जैसे ही उसको रियलाइज हुआ अच्छा ये हुआ, उसका रिजल्ट ये है, जस्ट गेट्स ओके। तो अब हमें वी डोंट नेसेसरी हैव टू गो थ्रू दैट पास्ट लाइफ रिग्रेशन, वी नो देयर वाज अ पास्ट लाइफ एंड वी नो दिस इज समथिंग बिकॉज ऑफ दैट, सो इट्स जस्ट इजी टू एक्सेप्ट।
बट देन अभी आपने ये भी कहा कि थॉट जो है अब, क्योंकि एक बार हम विक्टिम हो गए, हम उस डिप्रेशन में चले गए हैं, नाउ द थॉट दैट हाउ टू कम आउट ऑफ इट, यू नो, नाउ दैट बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज नाउ द टाइम इज लाइक व्हाट टू डू नेक्स्ट, you know, how to come out of it. So, मतलब एक थेरेपिस्ट के नाते भी क्या आप कैसे कहेंगे कि वो बाहर निकले? एंड ऑफकोर्स अगर हम स्पिरिचुअली भी देखें तो वो थॉट को किस तरह से मोल्ड करना है कि हम बाहर निकल सकें।
ऐसे हादसों में एक तो बदले की भावना निर्माण होती है तुरंत, और भल वो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके साथ बड़ी समस्या हुई है तो नेचुरली मन के अंदर वो विचार चलेंगे, परंतु उसके पीछे एक रीजनेबल टाइम दो। कई बार मैंने देखा है सारा जीवन वहीं चला जाता है, 24 घंटे बस यही सोचते हैं कि भी कैसे मुझे न्याय मिले, है ना, कैसे कोर्ट के चक्कर लगा रहे हो। भल करिए, परंतु ये सोचिए कि जीवन में और भी बहुत कुछ है।
ऑब्सेशन बन जाता है।
हाँ, ये ऑब्सेशन नहीं बनना चाहिए कि भी और चीजें मुझे करनी है, मेरी जो टैलेंट्स है उसको निखारना है, जीवन में आगे बढ़ना है, यह बात भी साथ साथ में होनी चाहिए। और एक जो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं कि इसे फ्यूचर में प्रिवेंट करने के लिए आप क्या करो, क्योंकि तभी बिकॉज यू हैव सफर्ड।
नहीं, पर ये जो जब हम इस हादसे की बात करते हैं इसमें तो हम फ्यूचर में नहीं प्रिवेंट कर पाएंगे, लेकिन जो इंसिडेंट आप बात कर रहे हैं, जैसे हम एक्चुअली जो मेजर यू नो डिप्रेशन से गुजरते हैं वो हैं चाइल्ड अब्यूज और रेप विक्टिम्स जो हैं, कि रेप विक्टिम अगर आप है वो इंडिविजुअल हो जाते हैं।
यू आर राइट, रेप विक्टिम की बात ठीक नहीं, यहाँ पर भी मैं कहूंगा फॉर एग्जांपल टेररिस्ट अटैक्स है, ये नहीं, वहां इफ आई एम अ विक्टिम से फिर मैं अपनी लाइफ को डेडिकेट करूं कुछ तरीके से, ताकि नहीं लोगों को ट्रेनिंग में दे सकता हूं कि भी कैसे बचना है और कुछ, है ना भाई, टेररिस्ट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए भी कुछ एफर्ट की जाए। ब्रह्मा कुमारीज तिहार जेल में भी जाकर के उन्होंने कई मेडिटेशन के प्रोग्राम्स किए हैं। भले हमारे पास एग्जैक्ट स्टेटिस्टिक नहीं कि कितना परिवर्तन आया होगा, परंतु अगर 10% भी परिवर्तन आया है तो वो बहुत बड़ी वर्थवाइल चीज है। ब्रह्मा कुमारीज ने डाकुओं में भी चेंज लाए उसके लिए एफर्ट किए, डाकू पंचम सिंह की जो बहुत अच्छी तरह से सुनाते हैं, करीब 2 घंटे तक मेरा उनके साथ डिस्कशन हुआ था। तो कहते थे इम्पॉसिबल था कि अगर ये बहनें वहां नहीं आती तो मेरे में बदले की भावना थी जिसे मैं छूटता रिवेंज लेता, लेकिन इसकी मेरे माइंड के ऊपर इफेक्ट हुई। तो ऐसी कुछ एक्टिविटी हम कर सकते हैं
बिल्कुल
जिससे वो प्रिवेंट हो
और कहीं ना कहीं इंस्पायर होके, यू नो, इंस्पिरेशन जो है। और कहा यह जाता है कि जो खासकर मुजरिमों के लिए कहा जाए कि जो इतने प्लानर्स होते हैं, अगर वो पॉजिटिविटी में चले जाएं, सो दे कैन एक्चुअली बिकम सच गुड लीडर्स
एंड प्लानर्स, दे हैव द क्वालिटी,
यस, यू नो। तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी से निकल के पॉजिटिविटी में आ जाए। अगेन विक्टिम्स के बारे में अगर हम बात करें, खासकर रेप विक्टिम एक ऐसा विक्टिम है जिसके बारे में, जिसको जो जिस दौर से गुजरता है उस पूरे हादसे के बाद, वो एक बहुत लंबा वक्फा होता है, बहुत लंबे टाइम तक उस पूरे इंसिडेंट से बाहर निकलना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। साइकोलॉजिकली ऑल्सो अगर हम देखते हैं तो वो बाहर कैसे निकल सकती है या कैसे निकलना चाहिए, और हाउ स्पिरिचुअलिटी कैन हेल्प हर कार्मिक। उसका ये सवाल कि मेरे साथ क्या हुआ, तो चलिए कार्मिक डेप्थ था, अब व्हाट नेक्स्ट, देयर हैज़ टू बी अ नेक्स्ट, देयर हैज़ टू बी अ टुमारो, सो हाउ इज इट दैट शी कैन कम आउट ऑफ इट।
या पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इट्स एक्सट्रीम स्ट्रेस। कहीं डॉक्टर राहे ने एक पूरा स्केल तैयार किया है, उसमें बहुत सारे प्रश्न है और ये सारे प्रश्नों के पॉइंट्स भी दिए गए कि भी इसको कितनी स्ट्रेस होगी, जिसमें 100 पॉइंट्स दिए हैं कि नियर रिलेटिव की डेथ हो जाए तो दैट इज 100 पॉइंट, नो मैरिज इज 50 पॉइंट क्योंकि दैट इज ऑल्सो स्ट्रेसफुल। तो मैं कई बार सोचता हूँ कि जो रेप विक्टिम्स की बात है, इट कैन बी इवन 10,000 पॉइंट्स विच इज एक्सट्रीमली सीवियर, लेकिन फिर भी देखा है कि ऐसे सिचुएशन में हर एक का रिएक्शन डिफरेंट होता है। भी कहीं तो डिप्रेस्ड फील करते, दे कमिट सुइसाइड इवन, नो, सम कीप दैट रिवेंज थ्रू आउट देयर लाइफ, कहीं तो डरने लगते हैं, ऑलवेज दे हैव अ फियर। और भी कुछ लोग है, ऑल दैट इज रेयर, कि ऐसे भी है कि भी जिन्होंने इसको अपना एक सोशल वर्क बना लिए, कि भी और भी जो इस प्रकार के विक्टिम्स है उनको जाके मिले, उनको काउंसलिंग दी, अपना अनुभव सुनाया, हाउ टू कम आउट।
डॉक्टर साहब, यहाँ एक सवाल बहुत से दर्शक भी जानना चाहते होंगे कि ये जो विक्टिम है, क्या ये कभी इस ट्रॉमा से बाहर पूरी तरह से आ सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है कि ये जो इमोशनल स्कार है लाइफ का इतना बड़ा, इसे पूरी तरह से बाहर आया जा सकता है? विल दे एवर बी एबल टू लीड अ नॉर्मल लाइफ?
नो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई ऑल्सो एग्री, क्योंकि नहीं, कई बार कहना सहज है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, बट स्टिल यू कैन,
दैट्स व्हाट,
एंड इवन इफ यू कैन कम आउट टू 90% से, है ना, 80%, 90% भी आप बाहर आ गए और अपनी लाइफ को नॉर्मल बना दिया, देन दैट इज ऑल्सो इफेक्टिव।
सिस्टर शिवानी, काउंसलिंग, स्पिरिचुअलिटी, द होल एस्पेक्ट ऑफ नोइंग माई सेल्फ, will it help?
Lots, lots.
And because can I come out 100%?
Because I think इस चीज़ में इससे ज़्यादा और कोई चीज़ help शायद नहीं कर सकती है, क्योंकि कोई और काउंसलिंग बहुत ज़्यादा help नहीं कर पाएगी इसमें, क्योंकि the pain is too much, you know. But now maybe ज़्यादातर इस तरह के मन में क्या चलता होगा, अपने आप से नफ़रत भी हो जाती है, you know, दूसरे से तो होती है लेकिन अपने अंदर लगता है कि मेरे अंदर कुछ, यू नो, अपने आप से नफ़रत जो होती है ना, वो ज़्यादा ट्रामेटाइज करती है दूसरे से, क्योंकि दूसरा शायद अब आपकी आंखों के सामने नहीं है लेकिन खुद को देख देख के आपको अपने आप से प्रॉब्लम होने लगती है और लगता है मेरे अंदर कुछ कमी थी जिसने इस तरह का घटना,
या
यू आर कंटिन्यूसली ब्रिंगिंग इट इन फ्रंट ऑफ यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दी अंडरस्टैंडिंग कि नथिंग वॉज रॉन्ग विद मी, यू नो, आई वॉज एब्सोल्युटली फाइन, ये किसी और की कमज़ोरी थी, मेरी कमज़ोरी नहीं थी। वो सबसे पहले, क्योंकि बहुत लो सेल्फ एस्टीम हो जाता है जब ये हो कि ये मेरी कमज़ोरी थी, मेरी कोई गलती थी, तो सबसे पहले वो अंडरस्टैंडिंग कि ये मेरी कमज़ोरी नहीं थी, दिस वॉज समबडी एल्सिज़ वीकनेस। और दूसरा, ओके, आई, इट मे साउंड ईजी बट इट इज़ दी ओनली थिंग विच मेक्स सेंस, इज आई हैव गॉन थ्रू समथिंग, एक दर्द है, अब मैं इस दर्द को कितना टाइम, यू नो, लेकर चलना चाहते हूँ, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 10 साल या पूरी जीवन, यू नो, दैट्स इन माई हैंड, डेफिनेटली वो मेरे हाथ में है. तो कहीं ना कहीं अगर अपनी लाइफ में अपने आप को एक अलग डायरेक्शन में ले जाएं, यू नो, अपने आप को किसी चीज़ में ऑक्यूपाई कर लें, और इसमें फैमिली का बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा कि आप नॉर्मल रहें. जितना आप नॉर्मल रहते हैं चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं. जितना आप सिंपथाइज करने की कोशिश करते हैं या बार बार उस इंसिडेंट को यू नो रीलिव करते हैं या उसको डिस्कस करते हैं, वो बार बार जागृत होता जाता है. बिकॉज हियर द ओनली थिंग दैट विल हेल्प इज़ फॉरगेट एंड फॉरगिव. Nothing else.
Yeah, the anger, you know.
Nothing
See,
else
when
will
the self-pity
help.
comes, the anger also comes.
Absolutely. Yes. So, तो आपको forget करना पड़ेगा, लेकिन भूलना easy नहीं है जब तक आप क्षमा नहीं कर सकेंगे. अब अगर logically कोई सोचे तो कहे ऐसे व्यक्ति को हम क्षमा नहीं कर सकते, लेकिन जब तक हम क्षमा नहीं करेंगे हम अपने आप को दर्द पहुँचाते रहेंगे. तो we will have to, you know, let go of that person because that person is still here. You know, physically नहीं है, लेकिन मैंने उसको hold करके रखा हुआ है अपने mind में. I will have to pick that person out from here and throw him out forcefully. बार बार वो thought जितनी बार भी मेरे सामने फिर आती है, no, that pain was for that one day, not again. लेकिन बार बार करने से I am inflicting that pain on myself, you know. So वो उस process से गुजरने के लिए. और दूसरा, किसी भी हादसे में, चाहे ये या कोई accident या handicap, मैं आत्मा हूँ, ये ज्ञान बहुत ज़्यादा help करता है. क्योंकि एक है कि मुझे कुछ हो गया है और एक है मेरे शरीर को कुछ हो गया है. Two things totally different.
मुझे तो कुछ हो ही नहीं सकता,
मुझे कुछ नहीं हो
ये
सकता,
एहसास
मुझे वो ही हो सकता जो मैं खुद को दूंगा, और वो है दर्द. शरीर का अंग खराब हो सकता है, लेकिन वो मेरे शरीर का, यू नो, द मिनट आई से मेरा शरीर, इट बिकम्स जैसे किसी और को हुआ है, यू नो. और जब किसी और को होता है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है, लेकिन मुझे हुआ है, मुझे हुआ है, बार बार मुझे हुआ है, दैट गिव्स अ लॉट ऑफ पेन. तो वो पेन हम अपने आप को देते हैं. जो एक्सीडेंट था उसने मेरे शरीर को तकलीफ दी, दर्द हम खुद को देते हैं. तो वो जब अपने आप को हम सेपरेट कर देते हैं विद अंडरस्टैंडिंग, इट्स जस्ट ईजियर टू अंडरस्टैंड.
और यहाँ पर जो मैंने अनुभव किया है कि रिलीजियस टीचिंग्स आर ऑल्सो वेरी पावरफुल. वो उदाहरण याद आता है कि जो प्रिस्ट और उनके बेटों को उड़ीसा में सभी पूरा जिंदा जला दिया गया.
Very good case.
ना, तो एक साल के बाद उनकी पत्नी का एक इंटरव्यू आया था. उनको पूछा कि भी आपको कैसा लग रहा है, वैसा हुआ तो बहुत अच्छा उन्होंने जवाब दिया. उन्होंने कहा कि जिस दिन यह हादसा हुआ उसी दिन मैंने उनको माफ कर दिया था. एंड नो लॉ विल टेक इट्स ओन एक्शन. उन्होंने ये भी कहा कि भाई लॉ के अनुसार सजा मिलेगी, लेकिन मैंने तो उनको माफ कर दिया.
क्योंकि
तो ये पावर साइकोलॉजी में नहीं हो सकती है ना. कुछ भी करो मनोविज्ञान या नहीं कर सकते. आध्यात्मिक जो उनकी बिलीफ सिस्टम थी उसके कारण ये पावर आई.
एंड ब्यूटीफुल एक्चुअली. फॉरगिव करना, माफ करने से मैं अपने आप के लिए ही शांति कहीं ना कहीं तलाश.
क्योंकि सबसे पहले मैं अपने आप को माफ करती हूं. सी, एनीथिंग यू गिविंग टू द अदर पर्सन वो आपके लिए है. ये बहुत इम्पोर्टेंट है. तो दूसरा, हम दूसरे को क्या माफ़ करेंगे, लेकिन खुद को जब कर देते हैं तो वी बिकम वेरी लाइट इनसाइड. एंड दिस एग्जांपल इज बिकॉज दैट लेडी इज लीडिंग अ ब्यूटीफुल लाइफ, जबकि उनके साथ जो हादसा हुआ, इट्स डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ इट. तो इट वाज जस्ट फॉरगिवनेस.
और भूलने के लिए भी माफ करना. अल्टीमेटली व्यक्ति भूलना चाहता है.
जब क्षमा करते हैं तभी भूल सकते हैं.
वो रिपीटेशन स्टॉप होगा और भूल.
दैट्स व्हाट यू सेड, फॉरगिव एंड देन फॉरगेट.
फॉरगेट करना नहीं पड़ेगा ना, वो भूल जाएगा.
हाँ.
हम लोग जनरली कहते हैं मैं भूल गया ना. अगर आपने ये तो बहुत बड़ी छोटी बातों में भी आपने मुझे ये कहा, मैं भूल गया जी, मैं भूल गया. अंदर फॉरगिव नहीं किया तो तब तक भूल नहीं सकते. फॉरगिव किया तो वो याद ही नहीं आएगा, और नहीं तो 10 साल बाद भी याद आएगा, आपका एक एक कड़वा बोल याद आएगा. तो इट्स नॉट फॉरगिवन, सो इट्स नॉट फॉरगॉटन.
बिल्कुल. डॉक्टर गिरीश पटेल, असिस्टेंट शिवानी, बहुत सार्थक हमारी बातचीत रही. ये एक्चुअली मुद्दे ऐसे नहीं हैं जिन्हें हम ऐसे ही छोड़ सकते हैं. इस पर अभी आगे अगली कड़ी में भी ज़रूर बातचीत करेंगे. कुछ और विक्टिमाइजेशन की बात जो है, कुछ और विक्टिम्स ऐसे हैं जो सारी ज़िंदगी निकाल देते हैं और वो तो कह भी नहीं पाते. उसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो होता है वो चाइल्ड अब्यूज़ होता है. लेकिन वो हम अगली कड़ी में पहुँचेंगे. आज जो बातचीत रही, अल्टीमेटली यही सामने आई बात कि फॉरगिव एंड देन यू ऑलवेज फॉरगेट, यू नो. एंड समवेयर जो ये बड़े हादसे हो रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, उसमें कार्मिक डेप्ट उसमें हमारे हाथ में नहीं है. एक्सेप्टेंस हमारे हाथ में है कि ये होना था, हो गया, कोई बात नहीं, अब आगे ज़िंदगी है. डॉक्टर गिरीश पटेल, सिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच. डिप्रेशन से जुड़ी और भी बातें हैं जो आपके दिमाग में होंगी, जो आपको सता रही होंगी और शायद आप हमारे साथ उन्हें शेयर करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। आप हमें फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं या ईमेल द्वारा भी हमें भेज सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है, विक्टिम्स हम में से हर कोई कभी ना कभी हुआ है। क्या विक्टिम्स बन के हम अपनी सारी ज़िंदगी इसी तरह से गुजार देंगे या फिर फॉरगिव एंड फॉरगेट यानी कि माफ़ करना और फिर भूल जाना इस पद्धति को अपनाएंगे। सोचिए और अगली कड़ी में कुछ और ऐसी ही बातें, कुछ और ऐसे ही मुद्दे लेकर आपसे मुलाकात करेंगे अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।